الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो ये हमारा हफ्ते में एक दिन ऑनलाइन दरस कुरान होता है पीर की रात को मर्दों में, जिसमें खवातीन को भी इनवाइट कर देते हैं, जिसके पास टाइम होता है तो वो भी शामिल हो जाती हैं, वरना खवातीन के लिए मुस्तकिल पीर की सुबह को दरस कुरान होता है। अगर आपके घर में कोई खातून हो जो कि उसमें शामिल होना चाहें या आप चाहें कि वो शामिल हो, तो उन तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह जूम के ऊपर ये दोनों दरस कुरान पीर के दिन होते हैं और जुमे के दिन एक सी का एक कंटिन्यूएशन चल रही होती है। तो सूरह मायदा की तफसीर हम पढ़ रहे हैं शाम वाले दरस कुरान में, मारफुल कुरान की जिल्द नंबर 3 से, और आयात नंबर 11 और 12 जो अभी तिलावत की गई, तो इनके मारूफ मसाइल हम पढ़ रहे थे। इनके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसे कि सूरह मायदा में उमूमी दस्तूर यही चल रहा है कि अल्लाह ताला ईमान वालों को बराह रास्त मुखातब करते हैं, मुखातब
करते हैं
करते
कुछ
हैं कि ए ईमान वालों, ए वो लोग जो कि मेरे नबी को मानते हो, उनको अल्लाह का रसूल मानते हो, मेरा नबी मानते हो, जुबान से इकरार करते हो, दिल में इसकी तस्दीक करते हो, तो तुम लोग सुनो, उज़्कुरू निअमतल्लाही, के अल्लाह की नेमत का तज़किरा करो, उसको याद रखो। यहाँ पर याद रखना मुराद है जो तुम्हारे ऊपर है, जबकि एक कौम ने अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाने की का इरादा किया, फकफ़ा अयदीहुम अन्कुम, बस उनके हाथों को रोक दिया। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनके हाथों को तुम्हारी तरफ बढ़ने से रोक दिया। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करो, वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर ही ईमान लाने वाले तवक्कुल यानी भरोसा करते हैं। ठीक है, एतमाद पहले, ईमान लाने का मतलब एतमाद, जब एतमाद हो गया तो फिर उसके बाद तवक्कुल भरोसा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। जब ईमान आ जाता है तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली भरोसा भी आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का तस्किरा किया, वलकद अखदुल्लाहु मीसाका बनी इसराइल, और तहकीक के अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के साथ एक अहद लिया था और मुकर्रर किए थे उनमें 12 नकीब। ठीक है, 12 सरदार, 12 रिप्रेजेंटेटिव्स, 12 रिस्पॉन्सिबल्स। ठीक है, क्योंकि 12 कौमें थी, 12 खानदान थे, तो 12 के ऊपर, हर एक के ऊपर एक एक। तो ये बनी इसराइल जो है, इनका तस्करा हम पिछली क्लास में पढ़ना शुरू कर चुके थे, तो पेज नंबर 79 के ऊपर हम थे कि बनी, उसमें हजरत ने, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने लिखा था कि बनी इसराइल में चूंकि बहुत से रसूल आने वाले थे, इसलिए उनको खसूसियत से इसकी ताकीद फरमाई गई। क्या मतलब? कि वो रसूलों पर ईमान लेकर के आए और उनके मकसदे रुश्दो हिदायत में उनकी इमदाद करें, उनकी मदद करें, रसूलों की मदद करें। तो आपसे पिछली क्लास में हमने आखिरी बात ही कही थी कि इंशाल्लाह अगली दफा टॉपिक हुई तो हम थोड़ा सा बनी इसराइल के बारे में एक बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो वो क्या बात है कि जो हम करना चाहते थे वो ये है कि बनी इसराइल के बारे में आपने सुना ही होगा, बल्कि इवन कुरान मजीद के अंदर भी है कि बनी इसराइल को फिरौन ने गुलाम बना दिया था। अन अबत्ता बनी इसराइल, मूसा अलैहि सलाम ने फिरौन के साथ जो उसके दरबार में एक कॉन्वर्सेशन हुई थी तो उसमें ये कहा था कि तूने बनी इसराइल को बंदा बनाया हुआ है, यानी अपना गुलाम बनाया हुआ है, अपना बंदा यानी अपना गुलाम बनाया हुआ है, ठीक है, तो तुम मेरे ऊपर क्या एहसान जतला रहे हो कि तुमने मुझे अपने महल में पाला, ये क्या वो क्या, तुमने तो बनी इसराइल को गुलाम बना करके रखा हुआ है। तो उस बड़ी बुराई के अंदर जो है ना वो तुम्हारी ये छोटी अच्छाई जो तुमने मेरे साथ इंडिविजुअल लेवल पे करी वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, और वैसे भी उसने अपनी मर्जी से तो करी नहीं थी, उसने तो बेगम साहिबा के कहने पे करी थी, ठीक है, वरना वो तो नहीं चाहता था मूसा अलैहि सलाम को महल में रखे, वो तो बेगम साहिबा अल्लाह ताला ने दिल उनका कर दिया मूसा अलैहि सलाम के ऊपर, तो प्यारे थे, खूबसूरत बच्चे थे, न्यू बॉर्न बेबी थे एकदम, तो उन्होंने कहा नहीं हम उसको अपने पास रखेंगे शायद कि हमारे लिए फायदे का सबब बने, तो अब उसको माननी पड़ गई। जब हमारे हजरत फरमाते हैं कि जो बीवियां कहती हैं ना कि शौहर उनकी मानते नहीं हैं तो वो गलत बात करती हैं, क्योंकि बड़े बड़े फिरौन जो हैं वो बीवियों की मान लेते हैं, ये एक मुहावरतन हजरत फरमाते हैं, तरगीबन हजरत फरमाते हैं, वरना जब फिरौन फिरौनियत पर आते हैं तो फिर बीवी के भी नहीं मानते, ठीक है। तो यही वो फिरौन था ना कि जिसने फिर ईमान लाने के बाद उसी बीवी को जो है वो कत्ल करवा दिया, और बल्कि अजियतें दे करके कत्ल करवाया, ठीक है। तो वो एक तकरीबन बीवियों को कहा जाता है कि भाई आप बात करना सीखें, सलीका सीखें बात करने का, अपनी बात प्रेजेंट करने का, तो आपकी शौहर इंशाल्लाह मान लेंगे आपकी बात, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर कि नहीं भी मानते, और बहुत सारी चीजों में खैर चलता है सब कुछ। खैर तो बनी इसराइल को फिरौन और फिरौन के जो कौम वाले थे उन्होंने गुलाम बनाया हुआ था, लेकिन ये गुलामी जो थी ना ये बड़ी अजीब किस्म की गुलामी थी, क्योंकि ये गुलामी जो थी ये इसको सुन करके हम इसको एक नॉर्मल लेवल ऑफ गुलामी के ऊपर कयास नहीं कर सकते, एक नॉर्मल टाइप ऑफ गुलामी के ऊपर कयास नहीं कर सकते, किस तरह से कि जैसे कि हम खुसूसन जो टीवी शीवी देखने वाले और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं इस बैकग्राउंड से आए हैं तो उन्होंने बहुत जो है ना वो अफ्रीकन स्लेव्स के बारे में पढ़ा होता है कि अफ्रीका से जो है वो यूरोपियन स्लेव बना बना करके बहुत सारे अफ्रीकियों को अमेरिका लेकर के गए, और उनको जो है वो बहुत मारा पीटा जाता था, और रास्ते में भी उनको बहुत तशद्दुद किया जाता था, और अमेरिका पहुंच करके भी उनको बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, और उनमें से जो भागता था यानी उनकी प्लांटेशन जहाँ पे वो उनको अपनी नौकरी पे रखते थे, अपने नौकरी पे नहीं गुलामी पे रखते थे कि तुम यहाँ पे हल चलाओगे, यहाँ पे तुम जो है वो जानवरों का ख्याल रखोगे, वहां से अगर कोई भागता था तो उसको फिर लिंच किया जाता था, ठीक है, पहले तो उसको पकड़ा जाता था, जब हाथ आ जाता था तो फिर पूरा मॉब जो है ना उसको मिल करके लिंच करता था, लिंच करने का मतलब है कि उसको मार मार करके जो है ना उसको फिर कत्ल कर दिया जाता था, कभी जिंदा जला दिया जाता था, कभी कभी फांसी पे लटकाया जाता था, तो ये लिंचिंग कहलाती थी। तो ये बहुत आम है, उनकी हिस्ट्री भरी हुई है, 400 साल तक वो ये हरकतें करते रहे अपने गुलामों के साथ। और दूसरी गुलामी भी हमें जो है वो जो और उसके अलावा माजी की गुलामियां नजर आती हैं उसमें भी इसी तरीका का है कि गुलाम को जो है वो बंद करके रखा जा रहा है, बहुत अजियत के साथ उसको तकलीफें दी जा रही हैं, अकेला है, ठीक है, अकेला गुलाम होता था अपने खानदानों से दूर, ठीक है, जैसे हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ये गुलाम थे, तो ये बिल्कुल तने तनहा इनको पकड़ करके लाया गया था, और इनके साथ जो है वो बहुत ही सख्ती का काम लिया जाता था। जो सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और यासिर रजी अल्लाह ताला अन ये दोनों गुलाम थे, मियाँ बीवी थे, ये फैमिली की शक्ल में बेशक रहते थे कि इनके बेटे हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु भी इनके साथ ही रहते थे, लेकिन काफी खराब हालात थे इनके। ठीक है, ये भी कोई फैमिली में बाकायदा आसानी से थ्राइव नहीं कर रहे होते थे। ठीक है, एक बहुत ही सुकून की जिंदगी नहीं गुजार रहे होते थे कि बस काम कर दिया सो कर दिया बाकी सब खैर है, ऐसा मामला नहीं था इनका। कहने का मकसद ये है कि गुलामी का जब जब लफ्ज हमारे सामने आता है ना, तो हमारे जहन में तशद्दुद, अज़ियत और बंद कोठरियां और सलाखें और जो है वो जंजीरें और रस्सियों के फंदे और ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, लेकिन क्या बनी इसराइल जो मिस्र में रहते थे वो भी ऐसे ही रहते थे? क्या उनको भी पाबंदे सलासल यानी जंजीरों में बांध करके रखा जाता था? क्या उनको भी जो है वो इसी तरीके से मार मार करके अजियतें दी जा रही होती थी हर वक्त? ठीक है, नहीं, ऐसा नजर नहीं आता। हाँ, किसी ने अगर कोई हॉलीवुड की फिल्म देखी हो तो उसके अंदर उन्होंने जरूर ऐसा करके दिखाया होगा। बेन हर शायद एक फिल्म थी, उसमें उन्होंने ऐसे ही दिखाया था, लेकिन उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, उसकी क्या हमारे पास हैसियत है उस फिल्म की? तो हम तो वैसे भी अपनी समझ जो है वो फिल्मों से तो नहीं लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले लेते थे, अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमा दी, अब वापस नहीं जाना उधर। ठीक है, तो हम तो नहीं लेते, हम तो कुरान और हदीस से इसकी समझ लेते हैं। तो कुरान और हदीस से जो समझ में आती है ना, वो ये कि बनी इसराइल अच्छी खासी आजादाना जिंदगी गुजारते थे। ठीक है, अच्छी खासी आजादाना जिंदगी, और बड़े फिरौन की कौम के साथ उनका उठना बैठना भी था, मिलना जुलना भी था, और जो है वो अच्छी खासी फ्रैंकनेस भी थी, अच्छी खासी फ्रैंकनेस थी इनकी। हत्ता के लड़ने पे आते थे तो लड़ना भी शुरू हो जाते थे, जैसे कि तिब्बती और बनी इसराइल के एक बंदे के दरमियान लड़ाई हो रही थी जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे और मुक्का मार दिया उसको। ठीक है ना, तो वो इतनी तो उसके अंदर तप्पड़ था ना कि वो अपने आका की कौम के साथ जो है वो लड़ाई कर रहा था। ठीक है, और वो भी जो है वो इसके साथ वन टू वन लगा हुआ था, लड़ाई करने के अंदर बहस मुबाइसे में भी लगा हुआ था। ठीक है, तो इनकी ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आती जैसे कि दूसरी गुलामियों की सिचुएशन नजर आती हैं। तो बेशक खादिम जरूर थे, इनके अंडर जरूर थे, मगलूब जरूर थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं थी जैसे कि अफ्रीका के गुलाम अमरीका के अंदर, या बिलाल हबशी और अम्मार बिन यासिर यासिर और सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का मुकरमा के अंदर, या यूरोप के अंदर इस किस्म की कोई सिचुएशन ऐसी नहीं थी। ठीक है, तो इनकी गुलामी जो थी ना, वो जो हमें बाकी चीजों से भी पता चलती है, वो खिदमत के लेवल की गुलामी थी। बेशक वो आका नहीं थे, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही पस्त भी नहीं थे, लेकिन इससे बढ़ करके जो इनकी गुलामी थी ना, ठीक है, वो एक बड़ी यूनिक शक्ल की गुलामी थी जो कि माजी में इन्हीं के दरमियान नजर आती है और फिर अब नजर आती है, अब नजर आती है वैसी वाली गुलामी जो कि उस वक्त गुलामी थी, वो गुलामी अब नजर आती है। वो कौन सी वाली गुलामी? वो गुलामी जो है वो जहनी गुलामी कहलाती है। ठीक है, जहनी गुलामी, सोच की गुलामी, जिसको के एक लफ्ज में कहा जाए तो मरऊबियत कहा जाए, मरऊब। ठीक है, तो वो फिरौन से बहुत मरऊब थे। ठीक है, वरना इनका मामला फिरौन की कौम के साथ बड़ा कैजुअल सा मामला था। ठीक है, मरऊब क्यों थे, इसकी वजह अगर आप में से कोई बता दे, क्यों थे वो मरऊब फिरौन की कौम से, कोई बता सकता है इसका इसकी वजह कि वो फिरौन की कौम से मरऊब क्यों थे? इसकी कोई कुरानी दलील, अगर हाफिज हैं तो वो हाफिज साहब जो है कुरान की आयत से भी बता सकते हैं, जो कि मुझे खुद इस वक्त याद नहीं है, मैं तो हाफिज हूं ही नहीं। ठीक है, तो वो मरऊब क्यों थे फिरौन की कौम से, जहनी मरऊब क्यों थे जहनी तौर पर? निजाम, निजाम से तो फिर कुछ ज्यादा बात समझ में नहीं आती, कुछ और बताएं। विद देयर सिविलाइजेशन, मैं ये कुछ थोड़ी कह रहा हूँ सिविलाइजेशन, मैं तो कह रहा हूँ क्यों थे, टेक्नोलॉजी की वजह से। अफ्रेड ऑफ बीइंग किल्ड? नहीं, दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग किल्ड। ये तो आपको पहले बता रहे थे कि अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकी गुलाम, दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग किल्ड, ये दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग किल्ड। इनके भी जो बच्चों को मारने का हुआ था ना, वो बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन थी कि यानी कि न्यू बॉन्ड्स को जो है वो मारने का फैसला कर दिया गया था। कर नहीं सकते थे कुछ, रोक नहीं सकते थे। ठीक है जी, बिल्कुल ये सही जवाब है जो उन्होंने दिया है। दुनियावी तरक्की, दुनियावी कामयाबियों को देख देख करके, दुनियावी कामयाबियां, क्योंकि ये जो फिरौन की सिविलाइजेशन थी ना, इसने बहुत मादी तरक्की करी हुई थी। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री था, ये उस जमाने का यूरोप था, ये उस जमाने का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, ठीक है ना। और इसकी और भी दलीलें हैं, आजकल का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फिरौन का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फिरौन है, उसके पिरामिड जो है वो इनके डॉलर नोट के ऊपर हैं कि नहीं है, ठीक है। इनके डॉलर नोट के ऊपर नायगरा फॉल्स नहीं है, इनके डॉलर नोट के ऊपर जो है वो टावर ऑफ पीसा इटली नहीं है, इनके डॉलर नोट के ऊपर जो है वो इंग्लैंड का जो है वो कोई नहीं है, ठीक है, बिग बेन नहीं है इनका, बल्कि अमेरिका के अंदर वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो क्या है, ग्रैंड कैनियन है अमेरिका का, बहुत बड़ा जो है वो निशान है उनका। नहीं, डॉलर नोट के ऊपर ग्रैंड कैनियन नहीं है, डॉलर नोट के ऊपर क्या है, पिरामिड, इजिप्शियन पिरामिड, ठीक है। तो बहरहाल, तो वो उस जमाने का यूएसए था जो कि आज का यूएसए है, ठीक है। अल्लदीन यूरीदून अल हयात दुनिया या लैतना मिसला मा उतिया कारून। तो भाई हम तो कारून की बात नहीं कर रहे, हम तो फिरौन की बात कर रहे हैं। कुरान मजीद की आयत जो है ना वो वाली है कि जिसमें फिरौन ने अपने कौम को कहा था कि क्या मैंने तुम्हारे लिए नहरों का निजाम नहीं बनाया, क्या मैंने तुम्हारे लिए ये इतने एडवांस जो है वो सिस्टम्स नहीं बना करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल एडवांसमेंट थी उस जमाने की। और ये जो फिर उन्होंने पिरामिड्स बनाए अपने फिरौनों को दफन करने के लिए, तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये जो थी ना, जिसकी वजह से वो ऐसे काम कर जाते थे जो कि इंसान अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो तरक्की होती है, ये अगले बंदे को मरूब कर देती है, लेकिन हर बंदे को मरूब नहीं कर सकती, सिर्फ उस बंदे को मरूब करती है जो कि खुद भी मटीरियलिस्ट हो। जो खुद भी मटीरियलिस्ट हो ना, उसको ये बड़ी आसानी के साथ मरूब कर देती है, ठीक है। अगर वो कोई रूहानी शख्सियत हो, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करने वालों के पीछे देखने की सलाहियत रखता हो, यानी खालिक को देखने की सलाहियत रखता हो, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मरूब नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मरूब। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो सिर्फ वही मरूब हो सकता है कि जिसकी नजर साइंस ये मटेरियल के आगे नहीं जा सकती, जो खुद अंधा है बेसिकली, ठीक है। तो वो मरूब हो जाता है, बड़ी आसानी से मरूब हो जाता है। इसी वजह से चूंकि बरेसगीर पाक व हिंद के अंदर भी गुनाहों की वजह से, नाशुक्री की वजह से ऑलरेडी अवामुन्नास बरेसगीर की अंधी हो चुकी थी, अवामुन्नास बरेसगीर की अंधी हो चुकी थी। इस वजह से जब यूरोप वालों ने आकर के कब्जा किया ना, तो वो उसी गुलामी का शिकार हो गए, बरेसगीर के अंदर अंग्रेज की भी वैसी गुलामी हो गई जैसी के बनी इसराइल फिरौन की गुलाम थी, बिल्कुल वही गुलामी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए बरेसगीर के अंदर भी हो गई। बरेसगीर वाले भी ऐसे नहीं थे, बरेसगीर की गुलामी देखें, हम गुलाम थे ना और अभी भी वैसे हैं, लेकिन कैसे थे, क्या हमें जो है उन्होंने जेलों में बंद कर दिया था, राइट, क्या हमें जो है मार मार करके अपनी खिदमतें ले रहे होते थे, नहीं, मर्जी से खिदमत कर रहे होते थे और बड़ा फखर के साथ खिदमत कर रहे होते थे, उनका कपड़ा पहन रहे होते थे, उनकी जो है वो टोपियां पहन रहे होते थे, और उनकी जो है वो यानी बड़े उनको गोरा साहब और गोरा साहब आ जाए, गोरी मेम आ जाए तो बस जो है वो निछावर है, निसार हुए हुए मेम साहब के ऊपर, और मेम साहब के ऊपर नहीं, मेम साहब नहीं, गोरा साहब और मेम साहब साहिबा, ठीक है। तो अपनी मर्जी से हम गुलाम बने थे, वो चंद थे जो कि गुलामी के खिलाफ थे, ठीक है। तो वो तो बस उन्होंने कोशिशें करी, कुछ लड़ाई छड़ाई करी, लेकिन उनको शिकस्त हो गई, क्योंकि अवाम तो थी उनके साथ, थी ही नहीं अवाम, तो उनके साथ थी ही नहीं, ठीक है। तो वो चंद आजाद लोग थे, और तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया ना वो दुनिया, राइट। तो ये उसूल तो फिर चलता है ना, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, ये तो शेर है, वो दुनिया तो है उनकी, ये दुनिया नहीं है उनकी आजाद बंदों की। तो वो नहीं चल सके, बिलाखिर उनको शिकस्त हो गई हर मैदान के अंदर, क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं थे। तो ये है बनी इसराइल की गुलामी, ठीक है। यानी इंडो पाक की गुलामी इज इक्वल टू बनी इसराइल की गुलामी, विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग, विच इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा दे, रूहानियत अता फरमा दे, तो फिर जो है ना वो इस गुलामी से निकलेंगे, वरना कोई रास्ता नहीं है इससे निकलने का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करके हम इस गुलामी से नहीं निकल सकते, नो वे। ठीक है, तो बहरा तो ये तो होगी बनी इसराइल के मुताले। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा, अलैस अली मुल्कुन मुल्क अलैस अली मुल्क मिस्र व हाजिल अनहार तजरी मिन तहती। एग्जैक्टली, ठीक है, माशाल्लाह, ये हाफिज साहब ने जबरदस्त आयत जो है वो यहाँ पे नकल फरमाई। और दूसरे भी हाफिज साहब ने, वनादा फिरऔन फी कौमी काला या कौमी अलैस अली मुल्क मिस्र व हाजिल अनहारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून, क्या तुम देखते नहीं हो कि मैंने तुम्हारे लिए कैसे जो है वो नहरें चलाई हुई हैं और कैसा मुल्क जो है वो मेरे पास है जिसके अंदर नीचे नीचे नहरें चलती हैं, ऊपर ऊपर पता नहीं क्या क्या चलता है। तो ये है, ठीक है, तो बहरहाल बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। किसी को कोई पूछना हो तो जरूर से पूछें। अच्छा, तो ये है बनी इसराइल का मसला। अब जो है वो रसूल की मदद करने के ऊपर थोड़ी सी बात करनी थी कि भाई रसूल की मदद करने का क्या मतलब है। ईमान तो आप ले गए, आपने मान लिया कि ये हजरत जी हैं, ठीक है, रसूल को मान लिया कि ये हजरत हैं, ठीक है, अब जो है वो मदद करने का क्या मतलब है, ये आप बताएंगे। हजरत को हजरत मान लिया, ठीक है, अब मदद करने की बारी आती है, यानी ईमान लेकर के आ गए, एतमाद कर लिया कि हाँ ये है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है, अब आगे बात आती है मदद करना। तो मदद करने का क्या मतलब होता है भाई जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानना, उनका जो हुक्म है उनकी अतात करना। ठीक है, माशाल्लाह, ये बहुत जबरदस्त उन्होंने जवाब दिया। तो रसूल की मानना, उनके मिशन को अपना मिशन बनाना, ठीक है, ये बहुत ही यानी बामुहावरा आपने जवाब दिया है, लेकिन इससे बात समझ में नहीं आती हम लोगों के, हम जैसे कमजोर लोगों के तो नहीं बात समझ में आती। एतमाद करना तो हो चुका ना, ईमान तो आप ला चुके, ठीक है, रसूल की हुक्म पे अमल करना यानी अताअत करना, तो ये डेफिनेटली ये मदद करने के अंदर शामिल होता है। भाई वो कह रहे हैं अब आप फलानी जगह जाके काम करें, तो बस जाके काम करें वहां पे, ठीक है, नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं समझता कि वो मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं समझता कि मैं ये करूं, और मैं आप भाई कह दिया करो तो आप करो, ठीक है, नहीं करना, तो ये तो मदद करना ना होगा ना। और बताएं मदद करने की और क्या क्या शक्ल सूरत हो सकती है। ये हो चुका था करना, प्रमोदारी करना, उनकी फिक्र और सोच को अपनाना और फिर आगे फैलाना, फिक्र और सोच को अपनाना। अपनाना का मतलब कि अपनी फिक्र भी उनकी फिक्र के मुताबिक, भाई उसके लिए सबसे पहले यह है कि उनकी फिक्र को समझना कि उनकी फिक्र है क्या, ठीक है, उनकी सोच है क्या। तो जब समझ लिया, अब उसको जो है वो अपनी सोच बनाना, इसको कहेंगे अपनाना, और फिर आगे भी फैलाना, ठीक है, ये भी हो गया। लेकिन इसके अलावा और बताएं, रसूल के वरसा की मदद करना, अभी तो खाली रसूल की बात हो रही है, वरसा तक बात नहीं आई है, रसूल की बात हो रही है, रसूल की बात करें, प्रोटेक्टिंग द दीन, रसूल की बात करें, रसूल की मदद कैसे की जाती है, उनकी हयात तैयबा पर अमल करना। चले हम चूंकि वहां पे मौजूद नहीं है ना, हमें तो 14 साल गुजर गए, ठीक है, तो हम रसूल की मदद हमारे इतना आसानी से समझ में नहीं आएगी, तो हम वो करते हैं जो हमारे लिए रिलेटिवली ज्यादा आसान हो समझना, ठीक है। तो हम कहते हैं शेख की कैसे मदद की जाती है, शेख की मदद कैसे की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल टर्म है, क्योंकि रसूल भी शेख ही होते हैं, सहाबा के शेख है ना, अब हमारे तो शेख नहीं है रसूल, ठीक है, तो हम तो अपने शेख की बात करें ना, हम अपने शेख की कैसे मदद कर सकते हैं जी, उनके एजुकेशन मॉडल का हिस्सा बनना, एजुकेशन मॉडल का हिस्सा बनना, ठीक है, वो जो एजुकेशन वगैरह दे रहे हैं तो उसमें शामिल होना, और उनके हुक्म, फिर वही बात, हुक्म को मानना। भाई हो चुका, आप पीछे भी तो देखे ना कि क्या चीज हो चुकी है, वो तो नहीं बताएं, और भी बताएं, उनकी मदद करना, उनकी, ये भी हो चुका, अब ये आप मदद नहीं कर रहे ना, देखें आप भी तो नहीं मदद कर रहे हैं, वही बात बार बार रिपीट किए जा रहे हैं जो कि मैं बोल चुका हूं, कितनी दफा बोल चुका हूँ कि भाई हो चुका ये, ठीक है, तो ट्राई टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। माशाल्लाह क्या जबरदस्त जवाब दिया है उन्होंने, जबरदस्त, 100 मार्क्स, 100 out of 100, मियाँ फिर मियाँ। ट्राई टू बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। यानी शेख क्या उर्दू में क्या कहते हैं इसको, जल्दी से बताएं उर्दू में, अपने वाली जो आपने बड़ा जबरदस्त 100% करेक्ट मार्क जो आपने आंसर दिया है ना, तो इसको उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, सर खाना छोड़ देना, ठीक है, यानी शेख का सर ना खाना। ये बहुत बड़ी मदद है, ये बहुत बड़ी मदद है कि शेख का सर नहीं खाए, ठीक है, सवाल पूछे, इल्म हासिल करे और फिर उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करे, सर ना खाए, ये बहुत बड़ी मदद है, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में कह देते हैं स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यार बस कर यार भाई, बस कर दे, बस करते बस है? अब काम करो, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मदद है। फिर दुआ से मदद करना, अल्लाह ताला से उनके उनके काम में बरकत के लिए, काम में इजाफे के लिए, काम की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला से मदद करना, मदद की दुआ करना, ठीक है, ये बहुत बड़ी मदद है, ठीक है। और वक्त से मदद करना, अपनी सलाहियतों से मदद करना, जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, जैसे किसी को आईटी की सलाहियत दी है तो आईटी के जरिए से मदद करें, जिसको जो है वो अल्लाह ताला ने और एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियत दी है, माशाल्लाह कुछ भाइयों को जो है वो खाने खाने वगैरह की बड़ी सलाहियत दी होती है कि कैसे खाना ऑर्डर होना चाहिए कैसे, तो वो माशाल्लाह उस तरीके से मदद करते हैं कि भाई जो कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट का मकसद क्या होता है, ताकि लोग जुड़े, ताकि लोग दीन के हल्के के अंदर आए, तो अब जब लोग आएंगे तो फिर उनको खाना भी तो खिलाना होगा ना, तो अब खाना खिलाने के लिए किसी की सलाहियत है, कैसे खाना खिलाते हैं भी लोगों, ये बहुत बड़ी सलाहियत होती है, हर एक के पास नहीं होती है। खिदमत करना, चाय वगैरह जो है वो बांटना, स्नैक्स का इंतजाम करना, ये बहुत बड़ी सलाहियत अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को दी हुई होती है, हर एक के पास नहीं होती है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनके जरिए से मदद की जाती है। सबसे अफजल बेशक यही है कि उनसे तालीम हासिल करना, सीखना, तरबियत हासिल करना और फिर आगे इसको अवामुन नास के अंदर फैलाना, ये तो सबसे अफजल दर्जा है, लेकिन ये तदरीजन होता है, ये फौरन से नहीं हो जाता। तो शुरू में तो खिदमत ही करनी होती है, शुरू में तो मदद करनी होती है दूसरे तरीकों से, यानी जो आपके स्किल्स हैं, जो आपका टाइम है, जो आपकी दुआएं हैं और जो आपके सर ना खाने की एबिलिटी अल्लाह ने दी है, इसके जरिए से मदद की जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे तालीम और तरबियत हासिल हो जाती है तो फिर उसके बाद बाकायदा दीन के काम का जो हुक्म देते हैं तो उस हुक्म के ऊपर अमल करके दूसरों में भी दीन की बात को फैलाने की मेहनत करना, ये सब का सब जो है वो मदद करने में आता है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम की सहाबा ने ऐसे मदद करी, ठीक है, सर ना खा करके, ठीक है, और अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को इस्तेमाल करके नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश करके, और यही काम जो है वो हमने अपने मशाइख के साथ करना है। अच्छा, ये तीसरे नंबर मिसाक के अंदर तीसरा नंबर था, फिर चौथा नंबर और पांचवा नंबर, इसके बारे में पीछे हम बात कर चुके, नहीं इसके बारे में बात करके अब हम चौथे नंबर पे बात कर रहे हैं कि चौथा नंबर मिसाक में यह है, अकरदु तुमुल्लाह कर्दन हसना, यानी तुम अल्लाह ताला को कर्ज दो अच्छी तरह का कर्ज, ठीक है। तो अच्छी तरह के कर्ज का मतलब क्या है, कर्जन हसना, अच्छा कर्ज, इसका मतलब यह है कि इखलास के साथ, ठीक है, यानी अल्लाह की रजा के लिए हो, जन्नत की जजा के लिए, इसको इखलास कहते हैं। कोई दुनियावी गर्ज इसमें शामिल ना हो कि मुझे यहां पर शोहरत मिलेगी या लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे या मेरी मुश्किल के वक्त में लोग मेरा काम आएंगे, मेरे काम आएंगे, ठीक है, तो इसलिए जो है मैं कर्ज दे रहा हूं लोगों को, या लोगों को जो है वो मदद कर रहा हूं कि भाई जब मेरे ऊपर पड़ेगी, बड़ा अकलमंद आदमी होता है वैसे, जो कि अपने ऊपर पड़ने को भी याद रखता है, मेरे ऊपर भी तो पड़ सकती है ना, तो अब लोग मेरे काम आएंगे मुश्किल वक्त में, लेकिन नहीं, ये इखलास नहीं, ठीक है। अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीज खर्च करे, 10 टाइम्स होकर मिलेगा ये नियत करना, नहीं 100, 10 टाइम्स के ऊपर कुछ थोड़ी करना है, 10 टाइम्स तो मिनिमम है भाई, जन्नत में तो फिर 700 टाइम्स भी मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा, तो जन्नत की नियत करना, 10, 20, 30, 40 में जाने की जरूरत नहीं है, बस जन्नत में मुझे चाहिए इसका अजर। अच्छा, रद्दी और बेकार चीजें देकर ना टाले, तो अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीज खर्च करे, रद्दी चीज और बेकार चीजें देकर ना टाले। जैसे एक हम होता है ना कि जो चीज फेंकने की लायक है तो वो हमने दे दी, भाई ठीक है ये भी आप दे सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा कोई, कि जो बेकार चीज हो गई है अब उसको आप किसी जरूरतमंद को नहीं दे सकते बल्कि उसको गार्बेज करना जरूरी है, नहीं ऐसा कोई नहीं है, ठीक है वो भी दें जरूरतमंद को, लेकिन ये मत समझें कि गोया के आपने एहसान कर दिया कि जो फेंकने के लायक चीज थी वो किसी जरूरतमंद को दे दी एंड देन यू आर डन, बड़ा मैंने तो बड़ा कमाल कर दिया भाई, रद्दी चीजें जो है वो फेंकने की बजाय मैंने किसी जरूरतमंद को दे दी, नहीं ठीक है, बल्कि महबूब चीज भी खर्च करें। और महबूब चीज जो है ना वो क्या, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने बेहतरीन किस्म का एक बेड खरीदा था अपने आराम के लिए तो अब बेहतरीन किस्म का बेड खरीद करके जो है वो किसी और को दें कि जी बेड मुझे बड़ा महबूब है, नहीं इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि आज के दौर में ये बहुत आसान हो गया है कि मनी पैसा, ठीक है, क्योंकि जितनी भी महबूब चीजें हैं ना आपकी वो सारी की सारी पैसे से आती हैं, ठीक है, कोई ऐसी महबूब चीज तो नहीं है मतलब कम से कम मटीरियली स्पीकिंग, ठीक है, जो कि पैसे के अलावा किसी और तरीके से आती हो, ठीक है, तो अब पैसा ही दरअसल महबूब चीजों को हासिल करने का सबब है, तो माल देना ठीक है ताकि वो भी जो है वो अपनी महबूब चीज उस माल से खरीद सके, ठीक है, तो बहुत आसान हो गया हमारे जैसे लोगों के लिए, वरना तो नहीं यनाल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, है फिर तो हर अपने घर की चीज जो है ना उठा उठा करके लोगों को देनी पड़ जाती, वो तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता ना, साहबा तो ये काम कर लेते थे अपने घर की सारी चीजें उठा करके दे करके आ जाते थे, हम तो इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो फिर तो हमारे लिए बहुत मसला हो जाता, तुम नेक बन ही नहीं सकते जब तक के तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तो भाई माल पैसा इसमें सब कवर हो जाता है, इसमें अल्लाह ताला की राह में खर्च करने को कर्ज देने से इसलिए ताबीर किया गया है कि कर्ज का बदला कानूनन व उर्फन और इखलाकन वाजिबुल अदा समझा जाता है, ठीक है, कर्ज की अदायगी हमारे दीन में कितनी अहमियत का हामिल है कि जिसका कर्ज अदा नहीं होता था नबी अलैहिस्सलाम उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे, हालांकि वो ईमान वाला होता और नबी अलैहिस्सलाम वहां पे मौजूद होते थे, ठीक है, कितनी बड़ी महरूमी होती थी, यानी हमें डराने के लिए इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है कि नबी मौजूद हो मरने वाला मुसलमान हो लेकिन उसका जनाजा नबी अलैहिस्सलाम ना पढ़े, ठीक है, तो कर्ज अदा करना कितना अहम है, तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला तो अखलाक तखल्लकु बे अखलाक अल्लाह, अल्लाह के तो अखलाक जो है वो असल अखलाक है, हमने तो उनको कॉपी करने की कोशिश करनी है, तो अल्लाह ताला कैसे नऊज बिल्ला अखलाक के खिलाफ जाके कोई काम कर सकते हैं कि कर्ज अदा ना करें, तो हम जो दे रहे हैं वो गोया के अल्लाह को कर्ज दे रहे हैं, इसी तरह ये यकीन करते हुए अल्लाह की राह में खर्च करें कि इसका बदला जरूर मिलेगा क्योंकि मैंने तो अल्लाह को दिया, अब जो अल्लाह को नहीं देता ना प्रॉब्लम तो उसके साथ है, क्या मतलब कि जिसने इखलास के साथ खर्च नहीं किया मसला तो उसका है, उसको क्यों भाई वापस मिले, उसको क्यों वापस मिले, उसने अल्लाह को कर्जा दिया नहीं, उसने तो दुनिया की शोहरत के लिए पैसा दिया, उसने तो जो है वो अपनी नफ्स को खुश करने के लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं राइट, उसने तो नफ्स को कर्जा दिया है, ठीक है, तो अब नफ्स से मांगो ना अपना कर्जा वापस, तो नफ्स तो तुम्हारा इस काबिल है कि तुम्हें कर्जा लौटा सके, तुम्हारे नफ्स के तो ठेंगे में कुछ नहीं है, उसके तो हाथ में कुछ है नहीं कि वो तुम्हें कुछ लौटा सके, तो भाई गलती तो हमारी होती है कि हम नफ्स को कर्जा दे रहे होते हैं खुश करने के लिए, तो फिर क्या मिलेगा वापस, अल्लाह को जो कर्जा देता है ना वापस तो उसको मिलता है और जरूर मिलता है, ठीक है, तो अब अल्लाह को कर्जा देना, इसमें यह भी याद रखें कि माल दौलत तो हमने कर लिया ना कि जी घर की चीजें उठा उठा करके तो दूसरे देना हमारे लिए नामुमकिन सी बात है माल देना, लेकिन ये भी याद रखें कि माल ही नहीं होता कि जो कि अल्लाह को कर्ज दिया जाता है, बल्कि अल्लाह की रजा की खातिर अगर हम अल्लाह के दीन की मदद में अपनी फिक्र लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, अपनी तालीम और तरबियत और अपनी सलाहियतें लगाते हैं, इसको भी अल्लाह को दिया हुआ कर्जा समझें, इसको क्यों नहीं अल्लाह को दिया हुआ कर्जा समझ रहे हैं, ठीक है, तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर लौटाएंगे, जो हम वक्त अल्लाह के दीन के लिए खर्च कर रहे हैं, सलाहियतें राइट, माल तो कम कम दर्जे की चीज होती है, तो अल्लाह ताला जो माल लौटाते हैं वो क्या सलाहियतों की किसी दूसरी शक्ल में नहीं लौटाएंगे, जरूर लौटाएंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से लौटाएंगे। और बाकी ऐसे लोग जो होते हैं इनको जन्नत में जो मुकाम मिलेगा वो किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। तो अल्लाह के दीन की फिक्र को अपनी फिक्र बना करके अपनी चीजें खर्च करते हैं उस रास्ते में। और जकात, जकाते फर्ज का जिक्र मुस्तकलन करने की बजाय इस जगह कर्ज हसन का जिक्र ये बतला रहा है, इससे मुराद जकात के अलावा दूसरे सदकात और खैरात है, ठीक है। यानी यहाँ पे कर्जन हसना का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जकात का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि दूसरी जगहों पर इता जकात बहुत सारी जगहों पर है, ठीक है, तो यहां पर वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि यहां पर फर्ज जकात मुराद नहीं बल्कि उसके अलावा। इससे ये भी मालूम हुआ कि मुसलमान सिर्फ जकात अदा करके सारी माली जिम्मेदारियों से सुबुकदोश नहीं हो जाता है। अब तक तो हम समझते थे कि जी फर्ज अदा हो गया, अब बस जन्नत, जैसे कि वो आराबी आए थे, ठीक है, कि बस मैं ये फर्ज करूंगा और मैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगा, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि ये जन्नती है अगर अपनी बात पे पूरा उतरता है तो, ठीक है। तो वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उनके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। अब हर बंदे के ऊपर हर चीज अप्लाई नहीं हो रही होती इस तरीके से ना। तो जकात अदा करके सारी माली जिम्मेदारियों से सुबुकदोश नहीं हो जाता है मुसलमान, जकात के अलावा भी कुछ और माली हुकूक इंसान के जिम्मे लाजिम है, ठीक है। क्या मतलब? डिपेंडिंग ऑन हिज और हर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वो किस माहौल में किस जगह पे रह रहा है, क्या तकाजे हैं उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर कोई तकाजा है ही नहीं तो फिर जकात मिनिमम तकाजा है, बेयर मिनिमम। नहीं अदा करेगा तो मार पड़ेगी, अदा कर देगा तो खलास, बात पूरी हो गई, क्योंकि उसके ऊपर कोई तकाजे हैं ही नहीं। लेकिन किसी जगह मस्जिद नहीं है, ये उस जगह रहता है जहां पे मस्जिद नहीं है, ठीक है, तो तामीर मस्जिद और दीनी तालीम के लिए जहां पर हुकूमत मुतकफ्फिल नहीं है, ठीक है, हुकूमत ने ये फर्ज अपने ऊपर नहीं लिया हुआ है कि मस्जिद तामीर करवाए, दीनी तालीम के लिए मदरसे तामीर करवाए और असातिज़ा को जो है वो उसकी तनख्वाह वगैरह दे, ठीक है। अब ये ऐसे कॉन्टेक्स्ट में रह रहा है जहां पर हुकूमत ने ये जिम्मेदारियां नहीं उठाई हुई है, तो दीनी तालीम का इंतजाम मुसलमानों ही पर लाजिम है, यानी अवाम के ऊपर, और ये अवाम का हिस्सा है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, उन आराबी का ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि हुकूमत वहां पे नहीं थी तो इस वजह से मस्जिद तामीर करना भी उस आराबी के ऊपर लाजिम था, मदरसा तामीर करना भी उस आराबी के ऊपर लाजिम था, नहीं, उसका कॉन्टेक्स्ट में एवरीथिंग वॉज बींग टेकन केयर ऑफ, नबी अलैहिस्सलाम वॉज देयर, ठीक है ना, और बाकी कोई जो है वो मुसलमान भी नहीं था उस जहां पे वो रहने वाला था, तो उसके लिए ज़कात काफी थी, बस ज़कात अदा करेगा पूरा हो जाएगा उसका मामला, ठीक है, मॉनेटरी इबादत उसकी पूरी हो जाएगी। लेकिन हर बंदे का ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता ना, तो यहां पर वो कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं कि अगर मस्जिद नहीं है तो तामीर मस्जिद, दीनी तालीम के लिए हुकूमत मुतकफ्फिल नहीं है तो दीनी तालीम का इंतजाम मुसलमानों ही पर लाजिम है। फर्क इतना है कि ज़कात फर्ज आयन है और ये फर्ज किफाया है, ठीक है, कि एक ग्रुप का हिस्सा है तो ग्रुप में से किसी एक ने दे दिया तो फिर पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर ये अकेला है और वहां पे दीनी तालीम का कोई इंतजाम नहीं है, बाकी सारे गरीब गुरबा खुद हैं, अब इसी के ऊपर वो फर्ज, फर्ज किफाया इसी के ऊपर आ जाएगी क्योंकि इसी के पास पैसा है, ठीक है। तो क्या लिखा, ये मामला आज हर मुल्क में है कि हुकूमत मुतकफ्फिल नहीं, ठीक है। अब ये आज का दौर तो दौर ही ऐसा है कि दीन हक जो है ना, असल दीन जो है उसकी हिफाजत किसी भी हुकूमत ने अपने जिम्मे नहीं ली, ठीक है ना, दीन को तब्दील करने की जिम्मेदारी तो सारी हुकूमतों ने अपने ऊपर ली हुई है, लेकिन असल दीन की हिफाजत जो है वो किसी हुकूमत ने अपने ऊपर नहीं ली हुई है। तो इस जमाने के अंदर जब ही अवाम के ऊपर ही आती, ठीक है, कि मस्जिद और मदरसे की और मदरसे के अंदर पढ़ने वाले जो इंसान है और पढ़ाने वाले जो इंसान है उनकी जिम्मेदारी अपने हाथ में रहे, ठीक है, क्योंकि आजकल की जो हुकूमतें हैं वो कॉलोनियलिज्म की पैदावार हैं और उनका जो है ना वो फिर अगर वो किसी मदरसे की कफालत उनके हाथ में आ जाती है तो फिर वो उसको जो है वो अपना स्कूल बना देती हैं, अपनी यूनिवर्सिटी बना देती हैं जिसके अंदर लॉर्ड मूकाले की तालीम चल रही होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे अकाबरीन जब अंग्रेज का रूल कायम हो गया हमारे अकाबरीन ने फिर जो मदारिस बनाए, यानी जो देवबंदी मदारिस कहलाते हैं, तो उनका जो निजाम था वो सिर्फ और सिर्फ अवामी चंदे से चलाया। ठीक है, उस जमाने में भी नवाब लोग होते थे, ठीक है ना, जैसे आज भी माशाल्लाह हम सभी नवाब हैं, लेकिन उस जमाने में भी बड़े बड़े नवाब होते थे। तो वो नवाब कहते थे, हम आपको फंड करेंगे, आप हमारे पास आ जाएं, हम जो है वो आपको इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह देंगे, लेकिन हमारे अकाबरीन मना कर देते थे। ठीक है, क्योंकि उनको पता था ये नवाब साहब वैसे तो मुसलमान हैं, लेकिन हरकतें इनकी जो है ना वो गुलामी वाली ही हैं, इन्होंने हमें नहीं छोड़ना। ठीक है, तो हुकूमत के ऊपर एतमाद आज के दौर में नहीं किया जा सकता है दीनी मामलात के अंदर। ठीक है, दीनी तालीम, दीनी मामलात, दीनी उमूर के अंदर हुकूमतों के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस वक्त दुनिया के अंदर एक नई लहर चली हुई है। वो लहर ये है कि हुकूमत वक्त जो होती है ना, उसको नेक बना करके पोर्ट्रे किया जाए। ठीक है, नेक बना करके पोर्ट्रे किया जाए कि देखें, पहले तो हुकूमतें वाकई बहुत गंदी होती थी, बहुत नौटी किस्म की होती थी, गंदी बच्ची होती थी हुकूमतें, लेकिन अब हुकूमतें नेक बन गई। ठीक है, अब जो है ना वो हुकूमतें नेक बन गई हैं, दाढ़ी भी आ गई है, टोपी भी आ गई है, नमाजें भी पढ़ना शुरू हो गए हैं, और जो है वो बहुत सारे इस किस्म के दीनी काम जो है वो हुकूमत के लोग जो है वो करना शुरू हो गए हैं। अब हुकूमत इस काबिल हो गई है कि अब आप दोबारा से अपने मदारिस के मामले में हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट मार्केट के अंदर ये वाली चीज आई है, जिसको फितने दज्जाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि हुकूमत पहले तो बहुत गंदी होती थी, बेशक चंद साल पहले तक तो हुकूमत बहुत गंदी होती थी, हर जगह ही गंदी होती थी। हम आपसे बिल्कुल एग्री करते हैं कि हुकूमत गंदी होती थी, अब नहीं होती, बस अब ठीक हो गए, अब तौबा कर ली, अब नेक बन गए, अब जो है ना अब आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, अब आप अपने अपने मदरसे जो है ना वो आप हुकूमत के तहवील में दे दें, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, बल्कि इसके लिए और अच्छा हो जाएगा, मदरसे और तरक्की करेंगे और पनपेंगे और दीन को फायदा होगा और दीन फैलेगा, फूलेगा और पनपेगा और तरक्की करेगा और सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। ठीक है, इस वक्त ये चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो दीन को समझते हैं कि दीन तो अल्लाह ताला के हुक्मों का नाम है, ठीक है, दीन जो है ना वो सिर्फ चंद जाहिरी आमाल कर लेना या शक्लो सूरत बना लेना, ये नहीं है दीन, बल्कि दीन तो अल्लाह के हुक्मों का नाम है, जिसको फराइज कहा जाता है। ठीक है, तो फराइज की पाबंदी अगर है तब दीन है, फराइज की पाबंदी नहीं है तो दीन नहीं, चाहे कितनी उम्रे कर लें, ठीक है, चाहे कितनी लंबी लंबी दाढ़ियां उगा लें और कितनी जो है वो टोपियां पहनने पहना दें, दीन नहीं। ठीक है, दीन तो अल्लाह के हुक्मों का नाम है, जिसमें के सच बोलना भी एक हुक्म होता है, झूठ ना बोलना भी अल्लाह का हुक्मों में आता है, और बेहयाई ना करना भी अल्लाह के हुक्मों में आता है। ठीक है, तो अगर बेहयाई चल रही है और साथ साथ उम्रे भी चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दीन नहीं है, तो अब हम नहीं कर सकते इनके ऊपर मदारिस को इनके हवाले नहीं कर सकते। इसी वजह से हमारे बुजुर्ग जो हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, उनके साय को हमारे सरों पर तादेर आफियत के साथ कायम फरमाए, वो बिल्कुल भी यहाँ पे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बहुत 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 मेहनतें हो रही हैं, दजल और फरेब के जरिए से मेहनतें हो रही हैं और दूसरे साजिशों के जरिए से मेहनतें हो रही हैं, कि बस किसी तरीके से जो है ना ये लोग टले, ताकि हम मदरसों को जो है ना वो अपने तहवील में लेकर के ये जो आखिरी रह गए हैं ना दीन की हिफाजत के किले, इनको भी सफ़े हस्ती से मिटा दें। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को नाकाम फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने दीन की हिफाजत जो है वो अपने जिम्मे ली हुई है। बहरहाल जो भी होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह। तो कहते हैं कि फर्ज किफाया के मानी ये हैं कि कौम के चंद अफराद या किसी जमात ने इन जरूरतों को पूरा कर दिया तो दूसरे मुसलमान सुबकदोश हो जाते हैं, और अगर किसी ने भी ना किया तो सब गुनाहगार होते हैं। फर्ज किफाया एतिकाफ के बहाने से हम सभी जानते हैं कि फर्ज किफाया क्या होता है। ठीक है, तो किसी एक ने भी अगर एतिकाफ कर लिया उस मोहल्ले के लोगों में से, तो फिर फर्ज किफाया अदा हो गया। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि अगर मोहल्ले में सारी औरतें रहती हैं और सिर्फ एक मर्द रहता है, ठीक है, सारी औरतें रहती हैं और सिर्फ एक मर्द आकल बालिग सेहतमंद,
तो अब फर्ज किफाया कैसे अदा होगा? क्या औरत जाकर के बैठ जाए तो फर्ज किफाया एतिकाफ का अदा हो जाएगा? नहीं, बल्कि ये फर्ज किफाया उस एक मर्द के लिए फर्ज ऐन बन जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि उस मोहल्ले में एक ही है, वो उसी ने करना है, और तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से ये फर्ज किफाया पूरा हो जाए कि भाई अगर एक ही अमीर आदमी है पूरे के पूरे मोहल्ले के अंदर, ठीक है, तो अब तो उस एक नहीं करना है ना, ये तो नहीं कि अब कोई और दूसरा कर देगा, भाई कोई दूसरा आए ही नहीं, वो कैसे करेगा, तो एक ही है जिसके पास अल्लाह ताला ने माल असबाब दिया है, तो कोई और ना कर रहा हो तो फिर हमारे ऊपर ही ये फर्ज बनता है। आजकल दीनी तालीम और उसके मदारिस जिस कसम बुरसी और बेकसी के आलम में हैं, उनको वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसको दीन की अहम खिदमत समझकर कायम किया हुआ है। ज़कात अदा कर देने की हद तक मुसलमान जानते हैं कि हमारे जिम्मे फर्ज है, और ये जानने के बावजूद बहुत कम अफराद हैं जो ज़कात वाकई अदा भी करते हैं, ठीक है, और अदा करने वालों में भी बहुत कम अफराद हैं जो पूरा हिसाब करके पूरी ज़कात अदा करते हैं, और जो खाल खाल पूरी ज़कात अदा करने वाले भी हैं तो वो बिल्कुल ये समझे हुए हैं कि अब हमारे जिम्मे और कुछ नहीं, ठीक है, उनके सामने मस्जिद की जरूरत आए तो ज़कात का माल पेश करते हैं, और दीनी मदारिस की जरूरत पेश आए तो सिर्फ ज़कात का माल दिया जाता है, हालांकि ये फराइज ज़कात के अलावा मुसलमानों पर आए थे, ठीक है, यानी ये इन एडिशन टू ज़कात है, ये वाले फराइज मस्जिद और मदरसे वाले फराइज। और कुरान करीम की इस आयत और इसकी इमसाल बहुत सी आयात ने इसी को वाजह कर दिया है, ठीक है, इस आयत और इसके अलावा दूसरी आयत ने भी इस बात को वाजह कर दिया है कि सिर्फ ज़कात से काम नहीं चलता, अगर कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि ज़कात के अलावा भी फर्ज मौजूद है, क्योंकि दीन की हिफाजत फर्ज है, ठीक है, क्योंकि दीन की हिफाजत फर्ज है तो दीन की हिफाजत के लिए अगर मदरसे की जरूरत है तो मदरसा भी फर्ज हो जाएगा, और उस्ताद की जरूरत है तो उस्ताद का इंतजाम करना भी फर्ज हो जाएगा, तालिब इल्म की जरूरत है तो तालिब इल्म का इंतजाम करना भी फर्ज हो जाएगा, यानी उसके खाने पीने का इंतजाम करना, उसके रहने सहने का इंतजाम करना, ठीक है, क्योंकि जो फर्ज को पूरा करने की शर्त होती है, जिसके बगैर फर्ज पूरा हो नहीं सकता, वो शर्त भी फर्ज हो जाती है, ठीक है। मीसाक की अहम दफात बयान करने के बाद ये भी बता दिया कि अगर तुमने मीसाक की पाबंदी की तो इसकी जजा ये होगी कि तुम्हारे पिछले गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे, यानी मीसाक की पाबंदी कितनी अल्लाह ताला के यहाँ अहम है कि दूसरे गुनाह उसकी वजह से माफ हो जाते हैं, और दायमी राहत तो आफियत की बेमिसाल जन्नत में रखा जाएगा। और आखिर में ये भी बतला दिया कि इन तमाम वाज़ह बयानात व इरशादात के बाद भी अगर किसी ने कुफर व सरकशी अख्तियार की तो वो एक साफ सीधी राह छोड़कर अपने हाथों तबाही के गड्ढे में जा गिरा, ठीक है। ये सारे वाज़ह बयानात कुरान अजीम शान के अंदर मौजूद हैं, मीसाक के साथ जो रिलेटेड है, अल्लाह ताला के साथ किया हुआ वादा, ठीक है। तो ये कुरान 1947 में था कि नहीं था, क्या ख्याल है? 14 अगस्त 1947 को ये कुरान क्या दुनिया में मौजूद था या अभी आया है 21वीं सदी में? तो 1947 की 14 अगस्त या उससे पहले वाले जितने जी नारे मारे गए थे तो उसमें क्या अल्लाह ताला के साथ कोई वादा वादा नहीं हुआ था? पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या ये मीसाक नहीं है? यही तो मीसाक है, यही तो मीसाक है, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का मीसाक ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, ठीक है, तो इस मीसाक को पूरा किया हमने, राइट? नहीं किया कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता जी, नहीं? वो वादे ही कैसा जो पूरा कर दिया जाए, ये तमाशा चलता है अल्लाह ताला के साथ, ठीक है। तो पूरा हमने, जाहिर सी बात है, इस मीसाक को नहीं किया है, ठीक है। तो अब यही हाल है कि जो हिफाजत करने वाले हैं वो खुद ही जो है वो अपनी जान बचा बचा करके चल रहे होते हैं। कल हमें किसी हिफाजत करने वाले के बारे में किसी ने बताया कि वो जो है ना वो अपना यूनिफॉर्म पहन करके नहीं जा सकते, क्योंकि अगर किसी ने उनको देख लिया यूनिफॉर्म में तो पता नहीं क्या बनेगा उनका, है? तो जो मुहाफिज होता है ना वही गैर महफूज हो जाता है, जब अल्लाह का कहर आता है तो जो मुहाफिज होता है वही गैर महफूज हो जाता है। ये अल्लाह का कहर है, क्यों कहर है? वादा पूरा ना करने की वजह से। तो अब इसका हल क्या है? तौबा कर ली जाए और वादा पूरा करने की कोशिश की जाए, ठीक है, वरना कहर जो है ना वो बढ़ता ही चला जा रहा है, मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अल्लाह ताला में हिदायत तो साफ फरमाए। बात ये कि ये जो कस्म कुर्सी वगैरह के मामलात है ना, ये कसम कुर्सी और बेकसी अगर खत्म भी हो जाए ना, तो भी बात बनती नहीं है कि मदारिस की कसम कुर्सी खत्म हो जाए। अगर आपने मदारिस को खूब सारा माल पैसा दे दिया, ठीक है, असातिज़ा को जो है खूब सारा माल पैसा दे दिया, लेकिन साथ साथ आपने स्ट्रिंग्स अटैच की हुई, ठीक है, कि हमारी मानो, हमारी इज्जत करो, हमारा जो है वो इकराम करो, ठीक है ना, यानी एक सोशल प्रेशर आपने डाला हुआ है, आप जो है वो गोया के उस्ताद साहब को, शेख साहब को तनख्वाह दे रहे हैं, नाउ यू वॉन्ट योर वे। तो अब उस्ताद साहब और शेख साहब अगर माल दौलत वाले भी हो गए ना, तो भी कोई फायदा नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप दरअसल अपना एक प्रेशर डालने की चक्कर में अभी भी लगे हुए हैं। लानत है ऐसे माल के ऊपर, लानत ऐसी मदद के ऊपर, ये आपको जहन्नम में लेकर के जाएगी। जन्नत में तो हरगिज हरगिज ये नहीं लेके जाएगी, बल्कि जहन्नम की भी बहुत ही निचले दर्जे के अंदर लेके जाने का चांस ज्यादा है, ठीक है। तो ये कसम कुर्सी से निकाल देना और बेकसी के आलम से मदारिस को निकाल देना इज नॉट इनफ, इसके लिए इखलास भी शर्त है, इखलास, और फिर इखलास को आगे कंटिन्यू भी करना होता है, हैंडल भी करना होता है, उसको मेंटेन भी करना होता है, यानी कि देते वक्त तो इखलास था, बाद में जो है वो अपनी शर्तें लगा रहे हैं, ये इखलास नहीं होता। देते वक्त तो बड़ा अल्लाह की खातिर दिया था, और बाद में जो है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जैसे शेख साहब जो है आपके मकरूज बन मकरूज रहे, उस्ताद साहब जो है आपके मकरूज रहे, दीन के तालिबे इल्म जो है वो आपके मकरूज अपने आप को कंसिडर करना शुरू कर दें, ठीक है, इससे जहन्नुम मिलेगी, और सिर्फ मरने के बाद वाली जहन्नुम नहीं मिलेगी, बल्कि इसी दुनिया के अंदर भी जहन्नुम मिलेगी, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, दीनी मदारिस वाले और खानकाहों वाले, ये इस्लाह की मेहनत करने वाले लोग हैं, ये दीन का पुलिस पुलिस का निजाम है, ये दीन का पुलिस सिस्टम है, ठीक है। तो पुलिस के लिए क्या होता है कि पुलिस जो होती है ना, वो उसी वक्त अपना फर्ज सही तरीके से अंजाम दे सकती है जब तक जो है वो उसको ये खौफ ना हो कि अगर हमने किसी पहुंच वाले शख्स के ऊपर हाथ डाल दिया तो हमारा क्या बनेगा उसके बाद। होता ना हमारे यहाँ कि जब पुलिस वाला जो है वो किसी गवर्नमेंट की नंबर प्लेट वाली गाड़ी को रोक लेते हैं ना, पाकिस्तान में तो ये आम है, इंडिया में भी होता ही होगा पता नहीं, तो वो फिर जो गवर्नमेंट वाला होता है वो उधर ही फोन घुमाता है अपने डीआईजी कजन को, या डिप्टी कमिश्नर को, या अपने किसी फौज के रिश्तेदार, फौजी रिश्तेदार को, और फिर ये जो पुलिस वाला होता है ये इसकी नस्लें भी जो है ना वो माफी मांगती हैं, फिर इसकी नस्लें भी माफी मांगती हैं कि मैंने क्यों इस शख्स को जो है वो कानून तोड़ने की वजह से रोका था, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, मुआशरे के अंदर कानून तो टूटेगा ना, फिर अब पुलिस वाला कहेगा यार मैं क्यों रोकूं, मेरी जान को आ जाती है, मेरी मुसीबत पड़ जाती है अगर मैं किसी जो है वो कानून तोड़ने वालों को रोकूं कि भाई उसको सजा मिलेगी, उसने कानून क्यों तोड़ा, ये तो मेरे गले पड़ जाता है। तो अब क्या होगा इस मुआशरे के अंदर, पीपल विल बी ब्रेकिंग लॉज लेफ्ट एंड राइट। अब पुलिस वाला किसी को भी इस खौफ से नहीं रोकेगा, क्या पता ये कोई पहुंच वाला बंदा हो। तो अब क्या होगा, सिर्फ पहुंच वाले बंदे कानून नहीं तोड़ेंगे, बल्कि जो ना पहुंच वाले बंदे हैं ना वो भी कानून तोड़ेंगे, क्योंकि पुलिस वाला डर के मारे बैठा हुआ है, राइट, चुप शाह बनकर बैठे हुए हैं पुलिस वाले साहब, कि किसी को कुछ कह दिया मेरे गले पड़ जाएंगे ये। तो अब जो मुआशरे के अंदर फसाद फैलेगा, तो इस फसाद की वजह से किसी की जान माल इज्जत आबरू महफूज नहीं रहेगी, किसी की भी जान माल इज्जत आबरू महफूज नहीं रहेगी। यही मामला दीन की मेहनत करने वालों का भी है, कि उनको सिर्फ उनकी जेबें भर करके उनको अमीर बना देने से काम नहीं बनता, राइट, उनको हदीये तोहफे दे देने से काम नहीं बनता, बल्कि उनको ये रेस्पेक्ट भी देनी होगी, ये उनको इम्यूनिटी भी देनी होगी कि अगर आप किसी की इसलाह करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम जो है ना वो आपका जीना हराम कर देंगे, हम आपका सर खा करके कि आपके दिमाग में से भूस खत्म कर देंगे, आपके सर में से भेजा आपको हम खा के खत्म कर देंगे,
ये नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा, फिर वो चुपचाप बन के बैठ जाएंगे, हलवा खाते रहेंगे बैठ के, जैसे पीर साहब जो है वो बैठे हलवा खाते रहते हैं, लोग हदिया देते रहते हैं, पीर साहब किसी को मना नहीं कर सकते कि आप ये मत करें और ये मत करें और ये आपने ऐसे क्यों किया और ये वैसे क्यों किया। तो अब जब पीर साहब जो है वो इस्लाह की मेहनत खत्म कर देंगे और हलवे खाने की मेहनत जो है वो अपनी जारी रखेंगे, तो फिर मुआशरे में क्या होगा, फसाद फैलेगा, गुनाह फैलेगा, ठीक है। और फिर भी वही होगा कि किसी की जान माल इज्जत आबरू महफूज नहीं रहेगी, ठीक है जी। अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। आपके 15 मिनट साहब जिसने एक्स्ट्रा ले लिए, लेकिन उम्मीद है कि इससे इन सबको फायदा ही होगा। इन्होंने कोई मैसेज लिखा था, मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ कि अगर कोई जान पहचान वाला शख्स अपनी हाजत को बताकर हमसे माली तआवुन करने का सवाल करे, हमारे पास माल मौजूद हो, तो क्या उस शख्स का तआवुन करना फर्ज किफाया या जरूरी है या ना देने की गुंजाइश है। फर्ज किफाया का फतवा तो खामखा इसमें नहीं लगाने की जरूरत है। अगर आपके पास माल मौजूद है, अगर आप उसको जान पहचान वाला है और हाजत वाला भी है, तो ना देने की गुंजाइश तो है, क्योंकि फर्ज तो नहीं है लेकिन साइल है। तो अल्लाह ताला का हुक्म, अगरचे के वो वजूब के दर्जे का हुक्म नहीं है, लेकिन उसको समझना तो चाहिए ना। मोहब्बत वाले तो फिर अपने महबूब का जो रिक्वेस्ट भी होती है उसको भी वाजिब ही समझते हैं अपने। तो वह मसाइला फला तनहर, राइट, है ना, ये अल्लाह का हुक्म। तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले तो इसको अपने ऊपर वाजिब और फर्ज ही समझेंगे ना। वह अम मसाइला फला तनहर, जब गुंजाइश है, ठीक है, तो फिर उसको दे दें और अल्लाह ताला से उसकी बेहतरीन अजर की उम्मीद रखें। अल्लाह ताला मोहब्बत के ऊपर अजर भी देते हैं, वरना तो दुनिया के मोहब्बत करने वाले तो कहते हैं बस मेरा हुक्म पूरा करो, ठीक है ना, अजर वजर तो मिले ना मिले, मेरे पास अजर वजर कोई नहीं है, बस तुम मेरी बात पूरी करो। अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता। अल्लाह ताला जो है वो मोहब्बत का वो भी करते हैं कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, लेकिन साथ साथ जो है वो कर्जा भी अपने ऊपर ले लेते हैं और बेहतरीन तौर पे उसको लौटाते भी हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी शदीद मोहब्बत अता फरमा दे, उन लोगों में से बना ले जो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं। वा आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम।